आज तक अपने दिल और दिमाग के बीच की जंग में फंसा हुआ था। उसका दिल कुछ कह रहा था और दिमाग उसे भ्रमित कर रहा था। ये दुविधा उसे समझ नहीं आ रही थी, क्या करे और किसकी बात सुने। ये निर्णय ले पाना उसके लिए मुश्किल था। वो अपने दिल और दिमाग की आवाज़ ही ठीक से नहीं सुन पा रहा था। ऊपर से अरुणिमा की आहें सुनकर वो और भी हैरान हो गया। अरुणिमा नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आस्तिक जल्दी से अरुणिमा के पास गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरुणिमा अरुणिमा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, किससे बात कर रही हो? अरुणिमा की नींद अचानक खुल गई और वो चीख पड़ी, कौन है? वो घबराई हुई नजरों से देख रही थी, पर आस्तिक को देखकर उसके चेहरे की सारी घबराहट गायब हो गई और वो मुस्कुराने लगी। आस्तिक एक पल के लिए हैरान हो गया। अरुणिमा की चीखने पर उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसे हैरानी से देखने लगा, लेकिन अरुणिमा को मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुराया। अरुणिमा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बयां नहीं की जा सकती थी। उसने आस्तिक के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम ठीक हो? शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए, तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। अरुणिमा जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हुई और बेड से नीचे उतर गई। आस्तिक उसे अभी भी हैरान नजरों से देख रहा था। अरुणिमा जल्दी से थर्मामीटर लाई और आस्तिक के पास आते हुए बोली, चलो अब जल्दी से अपना फीवर चेक करो, मुझे देखना है तुम्हारा बुखार है या नहीं। आस्तिक की नज़र में अभी भी हैरानी थी और वो अरुणिमा की हर हरकत को नोट कर रहा था। अरुणिमा ने थर्मामीटर आस्तिक के होठों के पास लाया, लेकिन आस्तिक ने अपना मुंह नहीं खोला। अरुणिमा उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ परेशानी हो रही है क्या? तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं यहाँ कैसे आया? आस्तिक अपनी हैरानी भरी नज़रों से अरुणिमा को देखते हुए ये सवाल किया। अरुणिमा पहले तो उसके सवाल सुनकर हैरान हुई, लेकिन फिर उसने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया और उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने तुरंत अपना चेहरा चिंतित करते हुए कहा, तुम काफ़ी देर से घर वापस नहीं आए थे और बाहर बहुत खतरनाक तूफान चल रहा था, इसीलिए मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो गया हो। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? आस्तिक अपनी आंखें छोटी करते हुए अरुणिमा को देखकर सीधे सीधे ये सवाल किया, जिसके तुरंत बाद आस्तिक को अपने सीने पर एक चकड़न सी महसूस हुई। अरुणिमा तुरंत उसके सवाल का जवाब घबराई हुई आवाज़ में दिया, मेरा मतलब है कि बाहर तूफान बहुत ज़्यादा था, मैं क्या करती? तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और तुम्हारा कहीं आता पता भी नहीं था, यहाँ का लैंडलाइन भी बंद हो गया था, मैं किसको फ़ोन करती? तुमने भी ये नहीं बताया था कि घर कब तक आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने गई थी। अरुणिमा ने डरी हुई आवाज़ में ईमानदारी से जवाब दिया। उसे डर था कि आस्तिक उसके इस हरकत पर उसे डांटेगा, लेकिन आस्तिक के मुंह से कुछ नहीं निकला। उसकी नज़र अरुणिमा के डरे हुए चेहरे पर थी और उसने कहा, तो तुम मेरी फिक्र में भारी तूफान में ठंड में भीगते हुए मुझे ढूंढने गई थी? अरुणिमा घबरा गई और वो इसके आगे आस्तिक के सवालों का जवाब देने से भी डर रही थी, कहीं आस्तिक उस पर नाराज ना हो जाए। आस्तिक की पिछली सजा उसे याद थी, उसने आस्तिक से सवाल किया था पर जवाब के बदले आस्तिक ने उसे कुर्सी पर बांध दिया था और अपना क्रूर रूप दिखाया था, जिससे अरुणिमा बहुत डर गई थी। उसे एक बार फिर से वही डर सता रहा था, इसलिए उसने आस्तिक के सारे सवालों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार सा लग रहा है, मैं नीचे वाले कमरे में जा रही हूँ। इससे पहले कि अरुणिमा जाती, आस्तिक ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे रोक दिया। अरुणिमा की आंखें बड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, डर की वजह से। वो आस्तिक से डर रही थी। आस्तिक ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, पहले मेरे सवालों के जवाब दो, तुम मुझे ढूंढने के लिए भारी तूफान में क्यों गई थी? अरुणिमा घबराई हुई नजरों से आस्तिक को देख रही थी, पर उसी समय आस्तिक के पैरों के पास कुछ गिरा। आस्तिक ने नीचे देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। ये एक कपड़ा था, लेकिन ये कहाँ से आया था? ये ऊपर से कैसे गिरा? जब उसे पता चला कि ये वही पट्टी थी जो अरुणिमा ने उसके माथे पर लगाई थी, तो वो थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसे याद आया, अरुणिमा उसका बुखार चेक करना चाहती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बुखार की वजह से ही आस्तिक को ये भ्रम हो रहा था? और इसी सोच से आस्तिक के हाथ अरुणिमा की कलाई पर ढीले हो गए। अरुणिमा जल्दी से उस कपड़े को उठाती है और उसे वापस बाउल में डाल देती है, जिससे वो बार बार पानी पट्टी कर रही थी। अरुणिमा बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं इसे साफ कर देती हूँ। आस्तिक एक पर के लिए हैरान हुआ और धीरे से अपने माथे को छूने लगा। उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर ही थी, क्योंकि अरुणिमा ने बाथरूम में जाते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया था, लेकिन आस्तिक की नज़रें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। आस्तिक का दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़ा, कलेजा अब हर जगह से एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि अरुणिमा उसे ढूंढने के लिए भारी तूफान में गई थी। उसने इतना बड़ा जोखिम सिर्फ आस्तिक के लिए उठाया, लेकिन क्यों? सवाल ये था कि लेकिन क्यों, पर जवाब शायद किसी के पास नहीं था, या फिर बात यह हो सकती है कि शायद हालात की वजह से आस्तिक ठीक से सोच नहीं पा रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से आस्तिक अपने ख्यालों से बाहर निकला। अरुणिमा एक सूखा तौलिया अपने हाथों में लेकर बाथरूम से बाहर निकली। वो अपना हाथ साफ करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर एक नजर पलटकर उसने आस्तिक की तरफ देखा। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिल रही थीं, और इसी पल आस्तिक को वो कल याद आया जब उसने अरुणिमा की हंसी रोकने के लिए इसी बेड पर उसे किस किया था, और वो छवि उसके दिमाग में एकदम से बिजली की तरह कौंध गई, जिससे आस्तिक तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम पागल हो गए हो, तभी ये सब सोच रहे हो, आस्तिक अपने मन में कहा। आस्तिक पूरी तरह से बेड पर बैठ गया और उसने ब्लैंकेट को भी अपने कमर तक डाल रखा था। अपने हाथ बांधे हुए वो बस यही सोच रहा था कि अरुणिमा ने आखिर ऐसा क्यों किया। उसने जो अरुणिमा के साथ किया, उसके बाद अरुणिमा के ऐसा करने का क्या मकसद था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो सोच रहा था या जो देख रहा था वो सब सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी और सच्चाई कुछ और ही है। थोड़ी देर बाद अरुणिमा वापस कमरे में आई और इस बार उसके हाथ में एक बाउल था। आस्तिक उसे अपनी नजरों से घूर कर देखते हुए चुप रहा। अरुणिमा उसके सामने आ गई और बाउल को साइड टेबल पर रखते हुए बोली, कुछ खा लो। आस्तिक ने तिरछी नजरों से देखा तो उसे बाउल में दलिया था। आस्तिक का मुंह बन गया। वैसे ही उसे अभी बुखार था और उसे अपने मुंह में कड़वाहट भी महसूस हो रही थी। ऐसे में उसे दलिया में स्वाद नहीं नजर आ रहा था। मुझे नहीं खाना ये दलिया, बहुत बेस्वाद होता है, आस्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा। तो अरुणिमा उसे घूर कर देखती है। वो उसके पास बैठ गई और दलिए का बाउल अपने हाथ में ले लिया। वो चम्मच से दलिया लेती है और उसे अपने होठों को गोल कर हल्के हवा के झोंके से ठंडा करने लगी। आस्तिक की नज़र अरुणिमा पर गई और वो उसके गोल हो चुके होठों को देखता है। जब अरुणिमा के होठ सिकुड़कर गोल होते हैं तो वे छोटे से दिल के आकार में बदल जाते हैं। आस्तिक ने आज से पहले ये कभी नोटिस नहीं किया था। दलिया ठंडा करके अरुणिमा आस्तिक के मुँह के पास ले आई और बोली, एक बार खाकर तो देखो। लेकिन आस्तिक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए छोटे बच्चों की तरह जिद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। जब आस्तिक बच्चा बनने को तैयार हो गया था तो अरुणिमा कैसे पीछे रहती। उसने अपना दूसरा हाथ आस्तिक के गाल पर रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए अपनी आंखें बड़ी कर ली।
ये क्या, इतना कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अरुणिमा ने उसके मुंह में दलिए का चम्मच डालते हुए कहा, कभी कभी ना आस्तिक, तुम किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हो।